चलो ले चले तुम है उस गली जहां झूम उठे है हर कोई ये है मैं
आदाब सामईन, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं महफिल मंजूमात फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनम स्पॉटलाइट। दोस्तों, आज की इस महफिल में एक खास मौजू पे हम बात करने वाले हैं। ये मौजू नहीं, ये शायर है और ये शायर अपने आप में एक मौजू है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ नज़ीर अकबर आबादी की। बहुत ही मकबूल शायर, बहुत ही बड़े शायर। उनको अपने ज़माने में वो इज़्ज़त नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, मगर आज उनको वो इज़्ज़त मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी नज़में इस लायक हैं। और ऐसी ही उनकी कई सारी नज़में लेकर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर शायर, राकेश तिवारी साहब। राकेश तिवारी से कौन वाकिफ़ नहीं है, उनके कलाम सबने पढ़े हैं, सुने हैं और इतने आसान कलाम लिखते हैं, इतनी प्यारी ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि कानों में मिस्री सी घुल जाती है। इनके अशारों में भी कुछ अंदाज़ नज़ीर अकबर आबादी का मिल ही जाता है। तो आइए महफिल का आगाज़ करते हैं और राकेश तिवारी जी को दावत देना चाहता हूँ कि वो आएं और आज की महफिल की शुरुआत करें।
हुनर की कई ज़बाँ होती हैं, कई बार आपका हुनर भी आपसे बात करता है। मेरे हुनर ने मुझसे कहा कि ये मेरे बस में नहीं है कि तेरा गालिब और मीर हो जाना। फिर किसी उस्ताद ने कहा कि सबके लिए लिख लेते हो, सबके कहने पर कोशिश करना कि नज़ीर हो जाना। आदाब, मैं राकेश तिवारी और महफिल मंजूमात के इस एपिसोड में, इस ख्याल वाली चर्चा में मैं आपको स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। खैर, मुझसे किसी उस्ताद ने कहा था कि आप जब लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी में हर चीज़ आप बन सकते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, चारागर कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कलाकार भी कई बार किसी हद तक बन सकते हैं, पर लिखने वाले गज़लकार, नज़्मकार आप होते हैं। आपको बस इस बात का एहसास होता है किसी दिन कि आप तो लिख भी सकते हैं। अब फिर टैलेंट को स्किल, यानी कि अपने हुनर को कारीगरी में बदलने का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है, चलने लगता है। और इस सफ़र में हम चाहते हैं कि हमें किसी का हाथ मिल जाए, कोई हो जो हमारी उंगलियां थाम कर हमसे कहे कि चलो मैं बताता हूँ कि कैसे लिखना, कब लिखना, कहाँ लिखना। मैंने इस सफ़र में हमेशा उस्तादों की तरफ देखा और जितनी बार देखा अपने आप को उनसे बहुत दूर और बहुत नीचे पाया। जब गालिब के पास गया तो वो कह रहे थे कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सगोश है, यानी कि मेरी कलम जो है उस ऊपर वाले की जबान। मीर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझको शायर ना कहना मीर के साहिब, मैंने दर्द व गम जितने जमा किए तो दीवान किया। तो जब इन दोनों उस्तादों की तरफ मैंने देखा तो ये मयार में इतने ऊपर उठ गए कि कई बार आसमान में सितारे चमकते तो हैं पर उनके आसपास एक अंधेरा हो जाता है और वो अंधेरा आपको एहसास दिलाता है कि आप इन तक पहुंच नहीं सकते। और इसी अंधेरे के बीच हल्के से मखमली हाथों से मेरी कलाइयां पकड़ कर नज़ीर साहब मुझसे कहते हैं कि आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है मुफलिस कहो, फकीर कहो, आगरे का है शायर कहो, नज़ीर कहो, आगरे का है। और मैं इसी तरह मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि जब हम सफ़र में चलते हैं ना तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो चले वो बिल्कुल आसमान के सितारे जैसा हो, पर हम ये चाहते हैं कि जो साथ चले बिल्कुल हमारे जैसा, हमारी तरह बात करे, हमारी तरह ज़बान हो उसकी। और लिखने वाले या लिखने वालों के सफ़र में नज़ीर साहब मुझे बिल्कुल अपने जैसे लगे। वही खिलंदड़ी, वही मज़े, वही बाँकपन, उतनी ही गहराई और उतनी ही आसान सी लिखाई। कहते हैं कि खुसरो साहब के बाद, गालिब मीर साहब के बाद जो है शायरी ने एक अपना अलग ओहदा हासिल कर लिया था, एक मयार पर चली गई थी, एलिटिज्म में आ गया था कि कुछ लोग या फिर कुछ पहुंचे हुए लोग ही शायरी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद नजीर आया और सब उन्होंने एहसास दिलाया कि लिखा तो हर चीज़ पे जा सकता है, लिखा तो रोटियों पे जा सकता है, आदमी पे जा सकता है, ककड़ी पे जा सकता है, आप जिस फन पे चाहो लिख सकते हो, आप दरबार में जाकर अपनी शायरी कह सकते हो और एक ककड़ी बेचने वाला भी आपको पास बैठा कर अपनी शायरियाँ बनवा सकता है। मैंने नज़ीर साहब का दामन थाम लिया और हम बस चलते गए। इसके बाद जब भी जहाँ भी कहीं पर भी मुझे लगा कि शायद मैं ये क्यों लिख रहा हूँ या ठीक ठाक लिख रहा हूँ कि नहीं, नज़ीर साहब ने कहा बैठो हम बताते हैं, इतनी भी बुरी बात नहीं है ये लिखना। मसलन जब मैंने अपने लिखने की सफ़र की शुरुआत की तो मैंने कई सारी गहरी कविताएं भी लिखी, लेकिन मेरा जो मन था वो बड़ा करता था कि कभी किसी दिन समोसे पे लिखा जाए। समोसा मुझे बड़ा प्रिय है, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया, इस पूरे कायनात की शुरुआत शायद इसलिए हुई ताकि आदमजात एक दिन समोसे का स्वाद चख सके। इतना दीवानापन पर कहता ना कि जब भी खास लोगों की महफिल में बैठो वही मजाक उड़ा देते कि ये भी कोई शय हुई लिखने की कि समोसे पे लिखोगे। अमामिया इससे अच्छा एक काम करो, छोड़ दो कलम और करो कॉमेडी, करो लोगों को हंसाओ, इससे तो कविताएं क्या लिख रहे हो। तब मुझे एक लिखने वाले दोस्त ने हबीब तनवीर साहब के एक नाटक से मिलवाया जिसका नाम था आगरा बाजार, नज़ीर साहब की कहानी थी। और तब मैंने जाना कि नज़ीर साहब के साथ भी कुछ ऐसी ही परेशानियाँ हुई थी, जब वो ककड़ी वाले के लिए भी लिखते थे, रोटियों पर भी लिखते थे, तो लोग कहते थे कि यार भाई साहब ये क्या ही है। और वहाँ से मुझे हौसला मिला समोसे पे लिखने का, क्योंकि जब मैंने नज़ीर साहब की मैंने ककड़ी एक नज़्म पढ़ी जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या मीठी मीठी प्यारी पतली पतलियाँ हैं, फरहाद की निगाहें शीरी की हसलियाँ हैं, मजनू की सर्द आहें लैला की उंगलियाँ हैं, क्या खूब नर्म नाजुक है आगरे की ककड़ी, उसमें भी क्या खूब है काफिर इस्कंदर की ककड़ी। यानी ककड़ी वाले ने भी बिठा के नज़ीर साहब से लिखवा लिया और उन्होंने लिख दिया। तब मैंने समोसे पे कविता लिखी कि इसे खाने वाले झूठे गरीब झूठे सच्चे भी खाते हैं, हमारे गांव में जब सत्यनारायण चाचा बनाते हैं तो मदरसे के बच्चे भी खाते हैं। और फिर समोसे पे एक नज़्म तैयार हो गई। इसी तरह ज़िंदगी में जब भी जहां भी फंसे नज़ीर साहब ने आके संभाल लिया और एक बात का एहसास दिलाया कि हमेशा हम कोशिश करते हैं ना कि एक मयार हासिल हो जाए उसके बाद अपनी कलाकारी को दुनिया के सामने पेश करें या कुछ ऐसा लिखने लगे जैसे उस्ताद लिखते हैं। वैसा होना भी चाहिए, उरूज आपको सीखना भी चाहिए, लेकिन कई बार सीखते सीखते एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब आप बहुत सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, आपको इस बात का एहसास होने लगता है कि शायद मैंने इतना पढ़ लिया है या इतना अच्छा पढ़ लिया है कि क्या कभी मैं ऐसे लिख पाऊंगा। खैर जिंदगी में कई मोड़ ऐसे भी आए जहां बहुत बारीकियों पर लिखने का मन किया। कभी कभी जब मेरे अपने दोस्त ने, सबसे प्यारे दोस्त, स्कूल के दोस्त ने जब ये फैसला किया कि उसे ज़िंदगी आगे नहीं जीनी और वो सफ़र बीच में ही छोड़ के चला गया, तो मुझे लगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। आदमियों पे भी लिखा जाना चाहिए, पर आदमियों पे कौन लिखता है। तो वहाँ नज़ीर साहब फिर से रोशनी करने आए और तब मैंने आदमी नामा पढ़ा। और वहाँ नज़ीर साहब खूबसूरती से कहते हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, अच्छा भी आदमी ही कहता है या नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। आदमी नामा पढ़ने के बाद मेरे जहन से जो पहले लफ्ज़ निकले वो ये थे कि अच्छा आदमी था। मेरी जो वो वाली कविता है जिसमें मैं आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी इस आदत के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम हर जगह जाके यही कह देते हैं अच्छा आदमी था, वो कहीं ना कहीं आदमी नामा की ही देन है। नज़ीर साहब कहीं आपका हाथ नहीं छोड़ते, तब भी नहीं छोड़ते जब आप रोटियां खा रहे हों अचार खा रहे हों, अचारों को चूहों ने खा लिया है, तब भी नज़ीर साहब आकर कुछ ना कुछ उसमें भी दो या तीन लाइनें कह देते हैं। रोटियों पर भी उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि आदमी के पेट में जब आती हैं रोटियां, फूले नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, जितने भी मज़े हैं सब दिखाती हैं रोटियां। तब लगता है कि हमें हर बार किसी नए शहर की तलाश में कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। लिखने वाले हमेशा एक कोशिश करते हैं कि वो अपने लिए एक समंदर, किनारा, पहाड़, दरख्तों, दीवार, एक अलग सा एक माहौल ढूंढ लें, या ज़िंदगी में कुछ हल्का फुल्का या बहुत कुछ बड़ा हो जाए तब भाई साहब उस पर लिखना बनता है। नज़ीर साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है, खाने बैठो तो रोटियों को देखो, रोटियों पर भी लिखा जा सकता है। खैर अभी होली का वक्त आ रहा है, होली पर कहते हैं कि नवरात्रि में पंडित और होली में जो कवि हैं वो बिल्कुल धर पकड़ के पकड़े जाते हैं कि जहाँ कवि सम्मेलन हो जाए या होली की कुछ बात चले, और ऐसी ही जगह मुझे बुला लिया गया। अब मैं तो ठहरा काफिया बाज, हाँ यही कहा जाता है मुझे। कहते ना कि अगर अगर संगीत सुर है तो मुझे बिगड़ा हुआ साज कहते हैं, मैं इतने काफिया मिलाता हूँ कि लोग मुझे काफिया बाज कहते हैं। काफियाबाजी में ऐसा है कि मुझे लगता है कि जब आप बहुत सारे शायरों को पढ़ लें या कवियों को पढ़ लें अच्छे वाले, तब आप खुद को अगर कवियों और शायर कहें तो बड़ा एक गुमान होता है कि ये मैं कौन से गुबार में जी रहा हूँ, तो मैं अपने आप को काफियाबाजी कहता हूँ। पर ऐसी जगह जहाँ पर होली की शुरुआत हो रही है, मुझे लगा इसके लिए तो किसी और कवि को या हास्य कवि को पढ़ना होगा ताकि उनके शेर से उनकी कही हुई बात से शुरुआत की जाए। पर नज़ीर तो यहाँ भी आ गए और फिर वो कहते हैं कि जब फागुन के रंग झमकते हों तो देख बहारे होली की, जब डफ के शोर खड़कते हों तो देख बहारे होली की, परियों के रंग चमकते हों तो देख बहारे होली की, खमशी से जाम छलकते हों तो देख बहारे होली की। होली में भी आके बैठ गए नज़ीर साहब। और यही जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं ये तो कभी थी ही नहीं या इसका क्या ही मतलब है, नज़ीर साहब उसमें एक सबसे बड़ा पैमाना है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि किसी एक ज़बाँ तक ही आप अपने आप को महदूद कर दें और उसके आगे जाएं ही नहीं, क्योंकि आपको तो बस उतना ही पता है। आप हर जगह से कुछ ना कुछ ले सकते हैं, अवधी से भी ले सकते हैं, उर्दू से भी ले सकते हैं, हिंदी से भी ले सकते हैं। और लिखते वक्त शायद कभी ये गुमा भी नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ तक सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा। मेरे ख्याल से नज़ीर साहब को हम अब तक इसीलिए पढ़ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या उन्हें याद कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो भी लिखा शायद ये सोचकर लिखा ही नहीं कि कौन पढ़ेगा, कहाँ तक पढ़ेगा, क्या इसे कोई आगे समझेगा या नहीं, क्या इसे किसी महफिल में बड़े ही शानो अदब के साथ कोट किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये नज़ीर साहब ने लिखा है। वो बस लिखते थे। और कई बार अपनी चीज़ें ज़माने के सामने या सुनने वालों के सामने रखने का हुनर भी यही है कि आप खो जाएं अपनी ही लिखावट में, आप अपनी ही मस्ती को जिए और अपनी ही मस्ती को लिखें। तब कहीं जाकर आप नज़ीर के आसपास आएंगे और नज़ीर साहब आपका हाथ पकड़ के बिठा लेंगे पास में और कहेंगे सुनो चलो लिखते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं। आपको कब पता चलता है कि आप लिखने वाले हैं या आपके अंदर लिखने का हुनर है या आप शायद शायर हैं? आप इसे डिस्कवर कैसे करते हैं, इस बात का एहसास कब होता है? जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आएँ जब आपका दिल, आपकी सांसें, आपका जहन सब एक जगह पर आके ठहर जाए और आपका मन करे कि आप दुनिया को बताएं कि आप क्या महसूस कर सकते हैं, तो उस वक्त जो आप करें वो आपकी फनकारी है, वो आपका हुनर है। उस वक्त आपको कहीं हवाओं में एक तस्वीर बनाने का मन करे तो आप चित्रकार हैं। उस वक्त आपको सुरीली आवाज़ में कुछ गाने का मन करे तो गाने का हुनर है आपके पास। लेकिन उस वक्त अगर आप किसी शायर को याद करें और आपके मन में से भी कुछ काफियाबाजी निकल जाए तो समझिए कि कहीं ना कहीं लिखने का हुनर अता हुआ है आपको। ऐसा ही हुआ जब मैं मथुरा के पास पहुंचा और कृष्ण नगरी, कृष्ण खुद सामने खड़े थे, तो मुझे लगा कि कृष्ण बिहारी नूर की शायरियों को की तरफ जाता हूं, उन्होंने कुछ लिखा होगा या कई सारे अच्छे कवियों ने लिखा होगा। पर नज़ीर साहब एक कोने में अपनी हल्की सी मुस्कुराहट लिए वहाँ भी बैठे थे। तब मुझे उनकी लिखी हुई वो लाइनें याद आईं, इस हुस्नो अमल के सालिक ने, इस दस्त जबले के मालिक ने, कोहसार लिया उंगली पे उठा, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी, ना गोरा था ना काला था, मनमोहनी सूरत वाला था, जिस रंग में चाहा देख लिया, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। एक ही शेर, एक ही नज्म में कृष्ण और अल्लाह दोनों को लाने वाला ये शायर। तब आपको लगता है कि कितने ही झूठे फलसफे पाल के बैठे हैं आप कि दुनिया में दो चीज़ें अलग हैं, दो मजमून अलग हैं, दो बातें अलग हैं, सब कुछ एक ही तो आ सकता है। और इसीलिए शायद नज़ीर इसी साल नहीं हर साल पढ़े जाएंगे। हम कितने ही बार ये कह लें कि लिखने वाले को अपनी नज़्म को बच्चों की तरह रखना चाहिए, एक बार वो बड़े हो जाए तो उन्हें छोड़ दें, वो कहीं चली जाएंगी, लेकिन एक नाता, एक रिश्ता तो बन ही जाता है। हर लिखने वाला कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक बार तो ये सोचता ही है कि मेरे जाने के बाद कुछ मेरा लिखा हुआ तो बाकी रहे जो आने वाली नस्ल पढ़े या आने वाले लोग पढ़े और उसी लिखे पढ़े के बहाने उसे याद किया जाए। पर नज़ीर साहब ज़िंदगी के उस मोड़ में भी आकर बिल्कुल सामने बैठते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि इस भागती दौड़ती दुनिया में आप जाने किसके सहारे हो, सफ़र तो आपका भी ख़त्म हो जाना है क्योंकि आप भी तो बन जा रहे। जितने बार ज़िंदगी में ये ख्याल आया कि थाट बढ़ गए हैं और अब कुछ नाम कर लिया है, अब शायद ज़िंदगी के अंत तक ये साथ रहे या ज़िंदगी के बाद भी ये नाम रहे, ये कविता रहे, ये नज़्म रहे, तब तब बंजारा नामा जितने बार मैं पढ़ता हूँ वो मुझे ज़मीन पर ले आती है और कई बार खाक में भी मिला देती है। जब नज़ीर साहब ये कहते हैं कि तू हिस्रो हवा को छोड़ मिया, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब खाक पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। जिंदगी को एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। इस जिंदगी के खत्म होने को और उसकी बाद की अनसर्टेनिटी को कई कवियों ने, कई शायरों ने बांधा है। हरिवंश राय भी कहते हैं, जब वो अपनी कविता में ये बात कहते हैं कि मन देख जहां तक पाता है तमका सागर लहराता है, फिर भी कोई उस पार खड़ा हम सबको खींच बुलाता है, आज मैं चला कल तुम आओगी परसों सारे संगी साथी, किसी के रुकने से कोई रुकता नहीं, जिसको जाना है जाता है, मेरा तो दिल बहलता है देख सागर के हिलकोरों को, जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय तुम हो मन है उस पार न जाने क्या होगा। पर मुझे एहसास हुआ कि नज़ीर साहब ने भी ये बात बहुत पहले अपने ही अंदाज में कह दी थी। एक इंसान को बंजारे की शक्ल देते हुए उन्होंने कहा था कि जब मर्ग फिरा कर चाबुक को ये बैल बदन का हाँकेगा, कोई नाज समेटेगा तीरे, कोई गून सिए और ताकेगा, हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहर की भाकेगा, उस जंगल में फिर आह नजीर एक तिनका आंख न झांकेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बन जागा, सब खाक पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बन जागा, सब यहीं छूट जाना है और आप भी एक दिन बंजारे की तरह रुखसत हो जाएंगे। लेकिन आप रुखसत ना होइएगा, क्योंकि ये महफिल चलती रहेगी, सुनाने वालों की अर्जी चलती रहेगी और वो कुछ ना कुछ आकर आपको बताते रहेंगे। साथ बने रहिएगा और नज़ीर साहब को भी साथ रखिएगा। मिलते हैं।
तो दोस्तों, ये थे राकेश तिवारी साहब। उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया हो, आपने इन्जॉय किया हो। भाई उनकी बातों में तो मुझे भी मज़ा आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको भी आया होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपने दोस्त तलहा को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए महफिल मंजूमात फ्रॉम द हाउस ऑफ M&M स्पॉटलाइट।